नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भागवत के चौथे अध्याय के चौथे स्कंद के चौथे अध्याय दशमा दशमा श्लोक। हाँ, जगर्ह सामर्ष विपन्नया गिरा शिवद्विषं धूमपतश्रमस्मयं स्वतेजसा भूतगणान् समुत्थितान् निगृह्य देवी जगतोऽभिशृण्वतः जगर्ह सामर्ष विपन्नया गिरा शिवद्विषं धूमपतश्रमस्मयन् स्वतेजसा भूतगणान् समुत्थितान् निगृह्य देवी जगतोऽभिशृण्वतः जगर्ह सामर्ष विपन्नया गिरा शिवद्विषं धूमपथश्रमस्मयं स्वतेजसा भूतगणान् समुत्थितान् निगृह्य देवी जगतोऽभिशृण्वतः निगृह्य देवी जगतोऽभिशृण्वतः जगर्ह सामर्ष विपन्नया गिरा शिवद्विषं धूमपतश्रमस्मयं सा भूतगणान् समुत्थितान् निगृह्य देवी जगतोऽभिशृण्वतः। वैष्णवीस, जगर्ह सामर्ष विपन्नया गिरा शिवद्विषं धूमपतश्रमस्मयं स्वतेजसा भूतगणान् समुत्थितान् देवी जगतो विष्णुवतः। जगर्ह निंदा करने लगी, जैसे गर्हितम बोलते हैं ना संस्कृत में, गर्हितम का मतलब है जो निंदा निंदा। जगर्ह सा वह अमर्ष विपन्नया क्रोध के कारण अस्फुट गिरा वाणी से शिव द्विषम शिव का शत्रु धूमपथ यज्ञों में श्रम कष्टों से स्मयम अत्यंत गर्वित स्वतेजसा अपनी आज्ञा से भूतगणान भूतों के समुत्थितान सन्नद्ध तत्पर दक्ष को मारने के लिए निगृह्य रोका देवी सती ने जगतः सबों के उपस्थिति में अभिश्रण्वतः सुना जाकर अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की शिव के अनुचर भूतगण दक्ष को क्षति पहुंचाने अथवा मारने के लिए तत्पर थे किंतु सती ने आदेश देकर उन्हें रोका। वे अत्यंत क्रुद्ध और दुखी थी और उसी भाव में वे यज्ञ के सकाम कर्मों की विधि की तथा उन व्यक्तियों की जो इस प्रकार के अनावश्यक एवं कष्टकर यज्ञों के लिए गर्व करते हैं भर्त्सना करने लगी। उन्होंने सबों के समक्ष अपने पिता के विरुद्ध बोलते हुए उसकी विशेष निंदा की। तात्पर्य यज्ञ करने का विधान विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के प्रयोजनार्थ होता है क्योंकि वे यज्ञेश्वर कहलाते हैं और समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता वे ही हैं। इस तथ्य की पुष्टि भगवद्गीता में भी हुई है। भगवान कहते भोक्ताराम यज्ञ तपसाम वे ही समस्त यज्ञों के वास्तविक भोक्ता हैं। अल्पज्ञानी लोग इस तथ्य को न जानने के कारण भौतिक लाभ के हेतु यज्ञ करते हैं। इंद्र तृप्ति हेतु व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए ही दक्ष जैसे व्यक्ति तथा उनके अनुयायी यज्ञ करते हैं। ऐसे यज्ञों को बिना किसी फल के श्रम करना कहा गया है। श्रीमद् भागवत से इसकी पुष्टि होती है। कोई भले ही यज्ञ तथा अन्य सकाम कर्मों को संपन्न करने के वैदिक आदेश का पालन करे किंतु यदि इन कार्यों से विष्णु के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता तो सारा श्रम निरर्थक है। न उत्पाद ये दधिरतिम समय केवल वही बता रहे हैं। जिसने विष्णु के लिए प्रेम उत्पन्न कर लिया है उसे चाहिए कि विष्णु भक्तों के लिए भी प्रेम तथा आदर विकसित करे। शिव को वैष्णवों में अग्रणी माना जाता है। वैष्णवानाम यथा शंभुः। अतः जब सती ने देखा कि उनका पिता महान यज्ञ कर रहा है किंतु शिव के प्रति उनके मन में तनिक भी आदर नहीं है तो वे अत्यंत क्रोधित हुई। यह ठीक ही है। यदि विष्णु या वैष्णव का अपमान हो तो मनुष्य को क्रुद्ध होना चाहिए। अहिंसा विनयशीलता तथा नम्रता का पाठ पढ़ाने वाले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना कि जगाई तथा मदाई ने नित्यानंद का अपमान किया है तो वे परम क्रुद्ध हुए और उन्हें जान से मार डालना चाहा। जब विष्णु या वैष्णव का अपमान हो तो मनुष्य को क्रुद्ध होना चाहिए। नरोत्तमदास ठाकुर ने कहा क्रोध भक्त द्वेषी जने। हम में क्रोध रहता है और यह क्रोध परम गुण बन सकता है यदि उसका प्रयोग उस व्यक्ति पर किया जाए जो श्री भगवान या उनके भक्तों का द्वेषी है। यदि कोई विष्णु या वैष्णव पर आक्रमण कर रहा हो तो इसे सहन नहीं करना चाहिए। सती द्वारा अपने पिता पर प्रदर्शित क्रोध आपत्तिजनक नहीं था क्योंकि यद्यपि वह उनका पिता था किंतु वह सर्वश्रेष्ठ वैष्णव का अपमान कर रहा था। अतः सती का अपने पिता पर किया गया क्रोध श्लाघनीय था। सो इधर प्रभुपाद जी के तात्पर्य में तीन विषयों के ऊपर प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं। एक है सर्वप्रथम बता रहे हैं कि ये यज्ञ जो किया जाता है वो विष्णु की संतुष्टि के लिए किया जाता है। यज्ञो वै विष्णु हो विष्णु की संतुष्टि के लिए किया जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अनेक लोग यज्ञ करते हैं वो अपने भौतिक प्राप्तियों को हासिल करने के लिए और इसके कारण उनको यज्ञ करने के बावजूद भी विष्णु की प्रति रति जागृत नहीं होता। इसलिए जो विष्णु की प्रति रति को जागृत नहीं करता उस तरह के यज्ञ बेकार है, ऐसे वो बता रहे हैं पहले सर्वप्रथम। और आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो इस तरह विष्णु की पूजा करता है ऐसे व्यक्ति को वैष्णव का भी आदर देना चाहिए। और शिवजी परम वैष्णव हैं, उनको अनादर करके, उनके अपने मन में अनादर करके दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा है इधर, तो इस तरह वो दूसरी पॉइंट बता रहे हैं। शिवजी अग्रणी माना, वैष्णव में अग्रणी माने जाते हैं, वैष्णवानाम यथाशंभु, तो ये दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं। तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि ऐसे महान वैष्णव शिव की निंदा जब होता है, सती ने क्रोध प्रदर्शित किया, क्रोध का प्रदर्शन शास्त्रों में खंडन किया गया है, लेकिन अगर वही क्रोध को ऐसे एक महान वैष्णव के ऊपर जब अपराध किया जाता है तो जो व्यक्ति अपराधी है उसके विरुद्ध क्रोध दिखाया जाए तो वो सही इस्तेमाल है क्रोध का, इस तरह बता रहे हैं। तो ये शास्त्र में हमें पढ़ने को मिलता है कि धर्म के पथ में आने के बावजूद भी कोई कोई व्यक्ति धर्म को बाहरी दृष्टिकोण से पकड़ता है, लेकिन धर्म का मर्म नहीं जानता है। धर्म क्यों कर रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है, वो जानता नहीं। जैसे यज्ञिक ब्राह्मण भी ऐसे यज्ञ में डूबे हुए थे, जब गोप बालक आ पहुँचे उनके यहाँ, वो भूखे थे, कृष्ण ने उनको भेजा था, तो गोप बालकों ने बोला कि हे ब्राह्मणों ज़रा सुनो, हम लोग ऐसे समय पर आए हैं तुम्हारे पास कि अभी यज्ञ का एक अंग हो गया, अभी दूसरा अंग शुरू होने के पहले बीच में इंटरवल है, और इसमें आप दान भी देने के लिए योग्य हैं, आप दे सकते हो, गलती नहीं होता उससे। हम भी आपके यज्ञ के रीति रिवाज विधि विधान जानते हैं, क्योंकि इस तरह दान देने योग्य समय में हम लोग आए हैं, इसलिए आप ज़रूर हमें कुछ देना चाहिए पदार्थ, खाने का पदार्थ। तो ब्राह्मण लोग ऐसे मुड़कर देखा, गौ बालक को बोला कि देखो पहले ब्राह्मण लोग आएंगे, बाद में आप लोगों को दिया जाएगा, चले जाओ अभी। एक बार बोला, लेकिन वो गोप बालक खड़े रहे, लेकिन उनको परवाह ही नहीं किया वो लोगों ने, ऐसे नकार दिया उनको, अपने ही कामकाज में व्यस्त हो चुके थे ऐसे। तो उसके बाद वापस जब लौट गए गोप बालक, तभी यज्ञ ब्राह्मण के धर्मपत्नियां, उनके पास जाने के लिए भगवान ने कहा उनको। तो जब गए उनके पास, भगवान ने बोला कि ऐसा मत बोलना कि भगवान आए हैं, उनको भूख है, मेरे लिए कुछ मुझ मत मांगना, आप इतना ही बोलना कि भगवान और बलराम जी आए हैं, इतना तक ही बोलना बस। लेकिन गोप बालक प्रेम के वश में आकर भगवान के आदेश को भूल गया, इसलिए जाकर बोला, हे माता हो, इधर ही बगीचे में, आपके घर के पीछे बगीचे में उधर कृष्ण बलराम आए हैं, बहुत थके हैं, बहुत भूखे हैं, ऐसे बोला उन्होंने। तो इसको सुनकर यज्ञ ब्राह्मणों की धर्मपत्नी जो महान भक्त थी भगवान के, उनके हृदय चुभ गया, क्योंकि अगर कोई माता को पता चलता है कि बेटे को खाने को कुछ नहीं मिला, दिन भर भूखे रहा, तो उसको माता का हृदय चुभ जाती है ना, ऐसे उनके हृदय भी चुभ गया। जब ये लोगों ने बोला तो तुरंत वो सब व्यंजन तैयार करके वो लेके जाने के लिए तैयार हो गई। और गोप बालक बोले कि आप जाओ उधर बगीचे में कृष्ण को मिलने के लिए, लेकिन साथ साथ व्यंजन भी लेके जाओ, ऐसा मत हो जाए कि आप जल्दीबाजी में खुले हाथ के साथ आप भाग गए उधर, ऐसा ना हो जाए। इसलिए वो लोग बोले कि हम पहले से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप भोजन लेके जाओ, और उनके लिए भी नहीं हमारे लिए भी लेके जाओ, हम इतने लोग हैं, नंबर भी बोल दिया उन्होंने, सभी सब बोल दिया उनको। तो उसके बाद चतुर्विधम बहुगुणम, ऐसा बोला है कि चार विविध तरह के व्यंजन जो उन्होंने बनाया था, बड़े बड़े टिफ़िन बॉक्स में, जो जैसे ये उसको ढक्कन ढकने के लिए भी है, ढक्कन भी है उसका, है ना, हमारे किचन में भी रहता है ना बड़ा, ऐसे ऐसे इसके अंदर रखकर ढका कर, क्योंकि अगर नहीं ढकाएंगे तो कुछ धूल आ जाएगा, नहीं तो वो वो ठंडा पड़ जाएगा ना, इसलिए गरम गरम उनको लेकर सब गई ना? और भगवान को जाकर देखा, अति प्रसन्न हुई भगवान को देखकर। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरह धातु प्रवाल नट वेश मनोव्रतांसे विन्यस्तहस्तयुतरेण धुनाननाब्जम कर्णोत्पल अलक कपोल मुखाब्जहासम। इस तरह का भगवान की दर्शन जो लिया उन्होंने, उसका वर्णन, सुंदर वर्णन है श्लोक में। श्यामम, भगवान श्याम वर्ण के थे। हिरण्य परिधिम, ऐसे सोने के रंग के सुनहरा धोती पहने थे। वनमाल्य बर्ग, वनमाला पहने थे, और उनके घुंघराले बाल के ऊपर मोर पंख भी था। और जैसे हम वृंदावन में श्याम सुंदर के लिए देखते हैं, धातु प्रवाल नटवेशम, जैसे जो श्याम वर्ण के कृष्ण को ऐसे गोवर्धन से प्राप्त किया हुआ, अलग अलग मिनरल्स, क्या बोलते हैं मिनरल्स को, धातु बोलते हैं ना, धातुओं से अलंकृत किया जाता है। इस तरह अलंकृत किया गया भगवान को, किया था ऐसे अलंकार, बहुत सुंदर। धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रताम से, और अपने सब मित्रों को सखाओं के साथ थे भगवान, और एक सखा के कंधे के ऊपर अपने हाथ रखा भगवान ने, और दूसरे हाथ से ऐसे एक कमल को गोल गोल घुमा रहे थे ऐसे। तो जैसे गोल गोल घुमा रहे थे कमल को, सब यज्ञ ब्राह्मण की पत्नी जो महान भक्त थे, उनके हृदय भी गोल गोल घूम रहा था ऐसे उसको देखकर। अनुव्रताम से विन्यस्त हस्त इतरेण दुनाननाब्जम कर्णोत्पल, कर्ण में भगवान ने एक सुंदर फूल रखा था। अलक कपोल का मतलब जैसे बाल ऐसे गुंगराले होते हैं ना इधर, उसको अलग कपल बोलते हैं। मुखाब्ज हासम, और उनके कमल जैसे मुख में एक अंध हास छाया था, तो उस दृष्टि को देखकर प्रेमावेश जागृत हो गया इनके हृदय में, और भगवान को, उनके सब पार्षदों को उन्होंने प्रसाद परोसा ऐसे। उसके बाद भगवान ने बोला उनको एक अद्भुत आदेश, हे मेरे भक्तों, आप लोग सब वापस लौट जाओ, और मेरे निकटता से आपका प्रेम नहीं बढ़ता, लेकिन मेरे स्मरण से प्रेम बढ़ता है। अगर कोई मेरे निकट भी रहे, ऐसा नहीं कि निकट होने से, मेरे साथ नाचने से, मुझे छूने से भी प्रेम बढ़ता है, लेकिन मुझे जो स्मरण करता है, मेरे बारे में श्रवण करता है, उनके हृदय में प्रेम बढ़ता है। इसलिए आप लोग वापस लौट जाओ, आपके पति, आपके घर वाले और समाज के सब लोग आपको बहुत आदर के साथ स्वागत करेंगे, चले जाओ। तो सब चली गई, तो ब्राह्मण लोग, तभी एक श्लोक बोला उन्होंने, दिग्जन्मन त्रिवृत्त दिक्कुलम दिग्बहुज्ञताम, दिग्जन्मन दिग्जन्मन त्रिवृत्त, व्हाट द सेकंड लाइन, नो नो, व्हाट द सेकंड लाइन, करेक्ट, इट इज करेक्ट, दिक्कुलम दिग्बहुज्ञताम दिक्रिया दाक्ष्यम, व्हाट द थर्ड लाइन, नो नो, व्हाट द थर्ड लाइन, हाँ, दिग्जन्मन त्रिवृत्त दिग्व्रतम दिग्बहुज्ञताम दिक्कुलम दिक्क्रियादाक्ष्यम विमुखा ये तु अधोक्षजे, ऐसे बोला भगवान। अधोक्षज कृष्ण के क्यों अधोक्षज शब्द बोला, हमारे इंद्रियों से हम उनको समझ नहीं पाए, इसलिए अधोक्षज बोलते हैं कृष्ण को। हमारे अपूर्ण इंद्रियों से, जो त्रुटियों से भरा हुआ इंद्रियों से हम उनको समझ नहीं पाए, इसलिए अधोक्षज बोल रहे हैं। विमुखा ये तु अधोक्षजे, ऐसे अधोक्षज भगवान को हम समझ नहीं पाए, हम कितने बड़े मूर्ख हैं। दिग्जन्म न, हमारे धिक्कार है हमारे जन्म के लिए। त्रिवृत, हमने तीन दीक्षा लिया है, एक है हरिनाम दीक्षा लेते हैं, जैसे ब्राह्मण दीक्षा होता है ना, और यज्ञ करने के लिए भी एक दीक्षा होता है। तो तीनों दीक्षा लेने के बाद भी हम लोग इस तरह मूर्ख रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं दिक् उसका भी, और दिक् कुलम दिक् क्रिया दाक्ष्यम, हमारे अंदर क्रिया करने में दक्षता है यज्ञ करने में, लेकिन बोल रहे हैं विमुखा ये तो अधोक्षज, इस तरह हमने भगवान से सर मुड़ लिया है, हम बड़े मूर्ख हैं। तो इस तरह एक तरह का पश्चाताप उनके मन में आ गया। तो इस लीला से हम क्या बात समझते हैं, कभी कभी कुछ लोग कुछ काम करते हैं लेकिन सार सारांश ना समझकर उस कार्य को करते हैं। एक बार एक गांव में एक एक स्त्री ने बोला एक लड़की को, देखो इधर धूप में सुखाने के लिए हमने कुछ तो डाला है, जैसे गांव में सुखाने के लिए डालते हैं ना, आपने देखा होगा चावल हो गेहूं हो जो भी हो, अगर थोड़ा गीला है तो उसको सुखाने के लिए रखते हैं। तो बोले कि देखते रहना, अनेक जानवर जाते हैं, पंछी आते हैं, थोड़ा देखना। तो वो बूढ़ी स्त्री चली गई, तो लड़की बैठी थी, तो धीरे धीरे अलग अलग जानवर पंछी आकर बैठने लगे, खाने लगे, तो आधा खा लिया सब लोगों ने। तो बूढ़ी आई, पूछा ए देखा नहीं कैसे छोड़ दिया तुमने इस तरह? बोला नहीं देख रही हूँ, बोला देख रही हूँ, उनको रोका नहीं, नहीं नहीं आपने बोला देखने के लिए बोला, देख रही है ना, अगर रोकना है तो पहले से बोलना था आपको, ऐसे बोला उसने। इस तरह से कभी कभी लोग भूल जाते हैं हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं। इस तरह ये ब्राह्मण लोग कर रहे थे बड़े यज्ञ, बड़े मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और सब तरह की तैयारी हुआ था, धूमधाम से कर रहे थे ऐसे। लेकिन यज्ञ पुरुष जो कृष्ण है, पुरुषोत्तम है, उनके ही बगीचे में पीछे गार्डन में खड़े हैं, वो बुला रहे हैं, थोड़ा भूख है हमारा, हमारे लिए लेके आओ प्रसाद। वो बोले नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं हम यज्ञ करने में बहुत व्यस्त हैं, इस तरह बोल रहे हैं। अगर कोई कोई स्त्री अपने पति जो आर्मी में काम करता है उसका फोटो का पूजा कर रही है, पति ही खुद आ गया, दरवाज़ा कटकटा रहा है, बोलती है नहीं डिस्टर्ब मत करो हम पूजा करने में बिजी हैं, इसे बोले कितना मूर्खता है वो। इस तरह कभी कभी ये धर्म के लक्ष्य को लोग भूल जाते हैं, ये पहली बात बताया जा रहा है। इधर है दक्ष प्रजापति कर रहा है वाजपेयी यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ, सारे दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया है उसने, जैसे देवताओं को, अनेक ऋषि मुनियों को बुलाया है, और बहुत प्रचुर मात्रा में सामग्रियां लाए गए हैं और बहुत पैसा का भी खर्चा है, ये बड़ा बड़ा पार्टी जैसा है, सब लोग आ रहे हैं, ये विष्णु की पूजा हो रही है और बड़ा प्रजापति है। लेकिन ये शिवजी के ऊपर इनके मन में एक बड़ा अनादर है और उनको इनविटेशन नहीं दिया है, जानबूझकर, अनजाने से नहीं, जानबूझकर। कभी कभी दो दो लोगों के बीच में जब मतभेद होता है, कुछ अपराध का एक्सचेंज एक दूसरे से हो जाता है, तो दोनों ये बात निरूपण करना चाहते हैं कि हमको दूसरे की सहायता की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले खड़े रह सकते हैं अपने बलबूते पर, हमको दूसरों की ज़रूरत नहीं है। तो ये दक्षा ये दिखाना चाहा कि हाँ मैं बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ, और शिवजी मालूम है कि वो कौन है, वो ना आने से भी ये यज्ञ रुकने वाला नहीं है, हम करेंगे, और हम ऐसे अकेले पड़े नहीं हैं, इतना दुनिया भर के लोग आ रहे हैं हमारे यज्ञ में, इस तरह का भावना था उसका। तो जानबूझकर अपने मन में एक अनादर भावना को लेकर वो ऐसे यज्ञ किया। इसकी इस बात की पुष्टि तब होता है जब सती जा पहुंचती है घर में, उसके माता और सब बहन गीले आंखों के साथ उसको आकर आलिंगन करते हैं और स्वागत करते हैं, लेकिन सती परवाह नहीं करती, ये क्या मेरी बहन स्वागत कर रही है मुझे, माता स्वागत करते हैं, वो तो मैं उनके शरीर का ही एक अंग हूँ, मैं मेरे माता के शरीर का ही एक अंग हूँ, वो क्या हमको स्वागत कर रही है, ये क्या बड़ी बात है, ये तो अपने ही लोग हैं। लेकिन अपेक्षा की सती ने कि दक्ष का बर्ताव कैसा है, उनका मनोभावना क्या है, ये देखना चाहा उन्होंने। लेकिन दक्ष के उस यज्ञ में अनेक ब्राह्मण पुरुष आए थे और बाकी भी मिनिस्टर नौकर चाकर सब थे, सब ने देखा कि सती आ रही है शिव जी की धर्मपत्नी, और अगर साधारण दिन हो, साधारण तरीके से देखा जाए तो अगर सती आ रही है तो सब लोग उठकर मुस्कुराहट के साथ उनको स्वागत करना, उनको बिठाना और पूछताछ करना, कुशलता की पूछताछ करना, ये सब होता था पहले। लेकिन अभी सती आ रही है, सबके मन में इच्छा है कि सती को स्वागत किया जाए, लेकिन डर है किससे, दक्ष से, क्या बुला बरा बोल देगा वो, नहीं तो डांटेगा, नहीं तो हमको भगा देगा, नहीं तो हमारी दक्षिणा नहीं देगा वो, बोलेगा कि क्या तुम उसको स्वागत कर रहे हो, तो तुम्हारे उसके पार्टी में चले जाओ। ऐसे इस तरह डर के मारे साबुलों ने देखा सती को, ऐसे सर मुड़ लिया, ऐसे देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे डर के मारे, देख रहे थे लेकिन देख भी नहीं रहे थे जान बूझ कर। ये पता चल गया किसको? सती को। सती को समझ में आ गया कि क्योंकि मैं शिव जी से जुड़ी हूँ इसके कारण सब लोग मेरे से नाखुश हैं, क्योंकि नाखुश नहीं है, सब लोगों का आदर है लेकिन वो डर है दक्ष के साथ, दक्ष कुछ बोलेगा करके। और दक्ष भी है उधर, दक्ष ने भी देखा अपने बेटी आते हुए, ऐसे सर मुड़ लिया, यज्ञ के काम काज में बहुत व्यस्त हो गया वो। ये अपराध का चिन्ह है। अपराध का मतलब अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हमारा कुछ झगड़ा हो गया, ऐसे कुछ हृदय चुभने की बात हो गया, उसके बाद क्या हम माफ़ करते हैं माफ़ नहीं करते हैं, इस प्रश्न की जवाब कैसे दिया जा सकता है कि हम वो घटना घटने के बाद भविष्य में हम कैसे बर्ताव करते हैं, क्या हम उनको स्वागत करते हैं, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्या हम भूल जाते हैं माफ़ कर देते हैं। तो हृदय में एक तरह का विकार आ जाता है जब इस तरह का एक दूसरे के साथ झगड़ा होता है, तो हृदय में एक विकार आ जाता है। तो लोग ऐसे मासूम बच्चे जैसे नहीं होते हैं, बच्चे कभी कभी झगड़ा करते हैं, सुबह को भी बड़ा झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को का बाल पकड़कर खींचते हैं, लाफा देते हैं, अब शाम को साथ में बैठकर एक नाव चलाते हैं ये बारिश के पानी में, कभी देखने को मिलता है ऐसे बच्चों का। बच्चे का हृदय बहुत सरल होता है, बहुत आसानी से उनका वो कुछ हृदय में रखते नहीं है, कुछ है? कुछ रखते नहीं कि तुमने ऐसे बोला, तुमने ऐसे किया, हमको अनादर किया, इस तरह का बात नहीं रखते हैं वो। लेकिन ये दक्ष के हृदय में ऐसे विकार आया था कि उसने सोच लिया था कि हालांकि उन्होंने बड़ी सभा में शिव जी की निंदा की और सभा छोड़कर चला गया, उसके बाद भी उनके मन में शिव जी की ओर आदर नहीं था, और उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमारी ओर कुछ गलती हो गई, हमें माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं तो वो हमारा ही दामाद है, हम उनके साथ कैसे हम झगड़ा कर सकते हैं, इसको मिटा देना चाहिए, ऐसे गलत भावनाओं को मिटा देना चाहिए, इस तरह की बात उसके मन में नहीं उठा। आयुश्रियम यशो धर्मम लोकानाशिषये वच हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। ऐसे एक श्लोक आएगा, अभी बाद में आएगा वो श्लोक। इसका मतलब है आयु श्रियम यश धर्मम लोकान आशीष, ये सब चीज हंति श्रेयांसि सर्वाणि, ये सब अच्छे अच्छे गुण जो है सब खत्म हो जाएगा उस व्यक्ति में जिसके हृदय में इस तरह का गलत भावना है। तो दो चीज खत्म हो जाते हैं एक एक व्यक्ति के हृदय में, एक है अच्छे गुण जो धार्मिक गुण जिसको उसने अनेक जन्मों में इकट्ठा की है, अच्छे अच्छे कार्य करके पुण्य कार्य करके अच्छे अच्छे गुण, जैसे अजामिल के अंदर भी अनेक अच्छे गुण थे लेकिन एक गलत दृष्टि को दृष्टि देख कर वो सब खत्म हो गए, इस तरह अपराध से ये अच्छे गुण खत्म होते हैं। और दूसरा चीज़ है हृदय में जो भगवान की ओर कोमल भावनाएँ उठते हैं, भगवान की भक्ति भावना, भगवान के लिए प्रेम, भगवान की सेवा करने के लिए स्फूर्ति, ये सब खत्म हो जाते हैं एक व्यक्ति के हृदय में इस तरह। तो इधर है दक्ष प्रजापति, बड़ा यज्ञ कर रहा है, क्या इसको यज्ञ करने के लिए प्रेरणा क्या है, कैसे ये कर रहा है, ये सिर्फ दंभ के लिए कर रहा है। जैसे भगवद गीता में 16वां अध्याय में भगवान बताते हैं ऐसे एक श्लोक में, दंभ मान मदान बिता वर्धर यजंते नाम यज्ञस्ते दंभे न अभिधि पूर्वकम, ऐसे बताते हैं भगवान कि ये कुछ लोग यज्ञ करते हैं अपने नाम यश को फैलाने के लिए, लोगों के बीच में मशहूर बनने के लिए इस तरह है। तो इस तरह दक्ष भी कर रहा है, उसके अंदर गर्व की भावना है, यज्ञ कर रहा है, लेकिन उसको प्राप्त हुआ अंत में एक बकरा का सर, जो यज्ञ का नतीजा नहीं है। यज्ञ का नतीजा निकलना चाहिए विष्णु की दर्शन और विष्णु के आशीर्वाद और समृद्धि सबके लिए, लेकिन इसको इस तरह बकरा का सर मिलता है। इस तरह ये दक्ष प्रजापति के हृदय में जो भावना है वो सही नहीं है, क्योंकि बाहरी दृष्टि से वो यज्ञ कर रहा है, लेकिन यज्ञ के यज्ञ के पुरुष जो हैं विष्णु, उनकी संतुष्टि के लिए नहीं काम कर रहा है, इस तरह बताया जा रहा है। तो इस तरह जो भी अपने धार्मिक कार्यक्रम करे, उस धार्मिक कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है, न उत्पादिये अधिरतिम समय वही केवलम, हमारे हृदय में भगवान की ओर श्रद्धा, भगवान की ओर भक्ति, भगवान की ओर भावना, भगवान के संबंध में रुचि और भगवत कैंकर्य करने में आनंद इत्यादि उत्पन्न होना चाहिए। और हम भगवत भक्ति में जब इस तरह हम रुचि लेते हैं, भौतिक पदार्थों की ओर, दुनिया के वासनाओं की ओर हम भागेंगे नहीं। तो ये लक्षण है, ये परीक्षा हर एक को करना चाहिए, अपने हृदय में शोधन करना चाहिए। जैसे लेबोरेटरी में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कॉनिकल फ्लास्क लेकर, पहले तो वो एकदम वो लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बाद में धीरे धीरे पिंक बन जाता है अचानक कुछ समय के बाद, तो उसको एंड पॉइंट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इस तरह हमारे भक्तिमय जीवन के एंड पॉइंट एक्सपेरिमेंट क्या है, अंते नारायण स्मृति, वो हमारे एंड पॉइंट है, ये शरीर का एंड हो गया है, इसलिए एंड पॉइंट। तो उस समय अंते नारायण स्मृति देखना चाहिए, जीवन के पर्यंत, जीवन के अंत में अंते नारायण स्मृति, और जीवन जीते समय उत्पाद यदि रतिम, हाँ तो जीते समय रति जागृत होना चाहिए और अंत में भगवान नाम का स्मरण होना चाहिए। ये दो परीक्षा हैं भक्तिमय जीवन में, दोनों परीक्षाओं को हमें पूर्ति करना चाहिए दोनों में ऐसे। तो आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि दक्ष प्रजापति ऐसे महान वैष्णव शिव जी की निंदा की, जो बहुत बड़ा अपराध है, इस तरह वो अपराध के बारे में बता रहे हैं। देखिए दुर्वासा मुनि और अम्बरीश के कथा में प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बताते हैं, जब दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश को मारने के लिए एक बहुत बड़ा राक्षस को रचाया, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दुर्वासा मुनि ने भगवान विष्णु को विष्णु के हृदय में दुख देने के लिए तैयार हो गया, ऐसे लिखते हैं प्रभुपाद जी। इसका मतलब क्या है, क्योंकि भगवान बताते हैं साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तु अहम मदन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। वो बताते हैं कि भगवान मेरे भक्त मेरे हृदय में रहते हैं और मैं उनके हृदय में रहता हूँ, और मेरे भक्त मुझे छोड़कर कुछ नहीं जानते और मैं उनको छोड़कर कुछ नहीं जानता, ऐसे भगवान बताते हैं। इसलिए दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को मारने की जब योजना की, वो भगवान हृदय भगवान विष्णु के हृदय में एक चोट पहुँचने के बराबर है ऐसे। लेकिन उन्होंने दुर्वासा मुनि ने ऐसे गलती की, बड़ा गलती की। इसका कारण क्या है, उन्होंने सोचा कि अम्बरीश के अंदर कुछ गलती है। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान के महान शुद्ध भक्त जो होते हैं उनके कार्यकलापों में त्रुटि देखना आसान है हमारे भौतिक दृष्टिकोण से, लेकिन त्रुटि है क्या नहीं हमें मालूम नहीं है। तो अम्बरीश जैसे महान महात्मा पुरुष के हृदय में भगवान अंतर्यामी के रूप में खड़े रहकर उनको बुद्धि देते हैं, कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ऐसे। तो वो लोगों को सीधा भगवान से मार्गदर्शन मिलता है, इसलिए वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ बुझाई ऐसे बोला गया है। लेकिन ये बात को जाना नहीं दुर्वासा मुनि, उन्होंने सोचा कि उन्होंने कुछ तो गलती की है। ठीक है, गलती भी की है, लेकिन उस गलती के लिए क्या दंड योग्य होगा, छोटे गलती के लिए छोटा दंड, बड़े गलती के लिए बड़ा दंड शास्त्र बताते हैं। ठीक है, अगर अनजाने से थोड़ा चरणामृत पी लिया मेहमान को देने के पहले, ठीक है, तो उनको कुछ डांट ना हो थोड़ा डांट सकते थे, अरे मैं आया हूँ तुम्हारे घर में मेहमान के रूप में, हमको खिलाए पिलाए बिना तुम पी लिया, ये सही एटिकेट नहीं है, ठीक है अभी जो गलती हो गया अभी आगे जाकर मत करो, बोलकर बैठ जाना चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए शांति से, हो गया उधर से चले जाना चाहिए, है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया दुर्वासा मुनि, ये कैसे एक छोटे गलती के लिए अपने सर से एक बाल निकाल कर नीचे डालकर बड़ा राक्षस को सृष्टि किया उसको मारने के लिए, क्या थोड़ा चरणामृत पीने के लिए मार दोगे किसी को, इतना बड़ा उन्होंने, तो इसके कारण आप देखेंगे इसको बोलते हैं महदतिक्रमा। अभी जो हमने शब्द बोला था पुंसो महदतिक्रमा, तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये दुरासमनी वैष्णव नहीं थे, दुरासमनी थे बड़े योगी अम्बरीश वैष्णव वैष्णव थे। अगर वैष्णव के समूह में भी अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण याद आता है चैतन्य महाप्रभु के लीला में, एक बार सची माता को बुलाकर चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि देखो माँ आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा क्योंकि आपने बड़ा अपराध किया अद्वैताचार्य प्रभु की ओर। तो माता ने पूछा क्या किया मैंने बेटा, वो बोले कि जब विश्वरूप ने संन्यास ली आपने बोला कि विश्वरूप लगातार जाता था अद्वैताचार्य प्रभु के घर में और उधर सुन भागवत सुन सुन कर उसको अनासक्ति पैदा हो गया उसके हृदय में, तो अद्वैताचार्य प्रभु के प्रेरणा से विश्वरूप संन्यास लेकर चला गया। इस तरह आपके आपके मन में लगा, बोला नहीं आपने, क्या क्या हुआ लगा, बस आपके मन में इतना लगा, तो एक अपराध भावना खड़ा हो गया आपके ये अद्वैताचार्य प्रभु की ओर। देखिए अगर हमारे मन में किसी भक्त की ओर अपराध भावना जागृत होता है, हम कुछ ना भी बोले हमारे बर्ताव में वो दिखाई देता है, हम कैसे बातचीत करते हैं नहीं तो कैसे बात नहीं करते हैं, कैसे कुछ निर्णय लेना हो तो हम क्या निर्णय लेते हैं। तो अगर चार लोग एक कमरे में ठहरना हो यात्रा में, बोलेंगे इसको निकाल दो इसको दूसरे कमरे में डालो, मेरे कमरे में मत डालना, मैं उसके साथ हमको जमता नहीं है ना, ऐसे सोचते हैं। तो मन में जो बात है वो बर्ताव में भी आता है, लेकिन सची माता के संबंध में सिर्फ उनको मन में ऐसे एक धारणा था, लेकिन वो बड़ा अपराध माना इन्होंने, किसने, निमाय पंडित ने। तो सची माता ने पूछा बेटा बोलो इस अपराध को कैसे मिटा जाए, क्योंकि भगवान के महान भक्त अपराध को तुरंत मिटाना चाहते हैं, अनजाने से हो जाए नहीं तो जानबूझकर भी हो जाए, जो भी हो अपराध हुआ हो तो अपराध मिट जाए, हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए हमें। अगर अपराध के कारण एक बहुत बड़ा वो अपराध बोझ बन गया नहीं तो बड़ा एक बाधा हो गया, हम कृष्ण को पहुंच नहीं पाते हैं, कृष्ण की प्रेम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो क्या कुछ काम नहीं हुआ, किस काम के लिए संस्था में जुड़े हम वो काम नहीं होगा, है ना। इसलिए सची माता ने बोला कि बेटा तुम जो भी करना हो बोल दो मैं करूँगी। तो चैतन्य महाप्रभु बोले आपको अद्वैताचार्य प्रभु के पद धूलि को लेकर सर के ऊपर लगाना होगा आपको, तभी ये अपराध मिटेगा। तो बोली अद्वैताचार्य प्रभु इतने मोटे हैं, बड़े हैं, शक्तिशाली हैं, उनके पांव छूना छूना भी नहीं देंगे मुझे, क्योंकि मुझे अपने माता मानते हैं, मुझे माता के रूप में पेश आते हैं, तो इसके कारण कभी उनका धूलि तो प्राप्त होगी नहीं मुझे। तो महाप्रभु बोले नहीं आपको प्राप्त करना ही पड़ेगा आपको। तो इस तरह जब अद्वैताचार्य प्रभु को पता चल गया कि सची माता को कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होने वाला है, वो भाग दौड़ कर आ गए निमाय पंडित के पास। उन्होंने बोला कि हे भगवान ऐसा कैसा कर दिया आपने कि उनको नहीं मिलेगा कृष्ण प्रेम, सची माता सारे दुनिया के माता है, आपके भी माता है, परम पवित्र है। इस तरह उनकी गुणगान करते करते बेहोश होकर नीचे गिर पड़े वो। इतने में सची माता किचन से बाहर दौड़ कर आ गई, उनके पांव से दूध ले लिया अपने सर के ऊपर, उनके अपराध मिट गया ऐसे। इस तरह के लीलाएं बताए गए हैं सची माता की, अपराध में नहीं अपराध हो नहीं सकता उनकी और उनका अपराध मिटाने की जरूरत भी नहीं, लेकिन यह लीला ऐसे भगवान क्यों दिखाते हैं, क्योंकि अपराध होने के कारण एक भक्ति के हृदय जो है एक बगीचा के बराबर है जिसमें रंग बिरंगे सुगंधित फूल उगते हैं, उस बगीचे के अंदर एक बहुत बड़े हाथी को छोड़ा जाए तो अंदर जाकर अगर वो विध्वंस कर देता है उस पूरे बगीचे को। तो इस तरह एक भक्त के हृदय में कोमल भावनाएं जो हैं भगवान की भक्तिमय भक्ति भावना है, उस कोमल भावना उनको ध्वंस कर देता है इस तरह के अपराध। तो इसलिए भक्ति एक भक्त को अपने अहंकार को बचा कर रखने के बदले अहंकार को मिटाकर भगवान के भक्ति को अपने हृदय में प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति प्राप्त करना हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य है। और इस दुनिया में अहंकार को बचा कर रखने से क्या बड़ा लाभ होने वाला है, कुछ सिर्फ हमारे अहंकार का तोषण होता है बस। मन का तोषण, अहंकार का तोषण, अपने आप को बड़ा समझना, बस इस दुनिया में रक्षा को और क्या मिला इस दुनिया में, कुछ नहीं मिला। तो इस तरह अनेक उदाहरण बताते हैं। एक देवानंद पंडित नाम के बहुत बड़े भागवत के वक्ता, वो बहुत पढ़े लिखे थे और बहुत अच्छी तरह निपुणता के साथ अलंकृत भाषा में और संधि विच्छेद वगैरह करके वो भागवत को समझाने में निपुण थे वो, और अनेक हजारों लोग उनके भागवत सुनने के लिए आते थे। लेकिन ऐसे एक बार भागवत कथा बताते समय श्रीवास ठाकुर आकर पीछे बैठे थे, एक सुंदर श्लोक सुना उन्होंने, मधुर श्लोक कृष्ण की गुणगान में। जब वो श्लोक सुना तो श्रीवास ठाकुर के रोम कड़े हो गए, आंखों में पानी उबलने लगा, विह्वल होकर प्रेमावेश में आकर नीचे गिर पड़े, लोट पोटने लगे जमीन में। इसको देखकर सब बाकी लोग जो बैठे थे भागवत में वो लोग मुड़कर श्रीवास की ओर मुड़कर देखने लगे। तो श्रीवास ठाकुर के शिष्यों ने सोचा कि क्या क्लास में डिस्ट्रैक्शन हो गया है, सब लोगों को लोग सुन रहे हैं, ये आदमी आकर लोट पोट रहा है, कुछ तो व्याधि है इसके शरीर में, उठाओ उसको करके उठाकर उन्होंने पंडाल के बाहर फेंक दिया उनको, और अंदर आ गए ऐसे। तो बड़ा महा अपराध हो गया, क्योंकि श्रीवास ठाकुर भगवान के महान भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। लेकिन इस अपराध के कारण बाद में निमाय पंडित आकर देवानंद पंडित को देखा, उन्होंने उनकी आंखों में जलन था, ऐसे उनकी आंखों इतने आग बबूले हो गए थे। निमाय पंडित बोले, हे देवानंद पंडित, तुम्हारे भागवत का प्रवचन से क्या लाभ इस दुनिया को, मैं तुम्हारे भागवत को फाड़ दूंगा, ऐसे बोला। तो देवानंद पंडित को मालूम भी नहीं था क्या हुआ था, क्या हुआ था पता नहीं, उनको कारण मालूम नहीं था, लेकिन एक बात मालूम हो गया कि निमाय पंडित मेरे से क्रुद्ध है, उतना तक मालूम था उनको। तो समय बीत गया, एक बार एक वक्रेश्वर पंडित नाम के बहुत सुंदर नाचने वाले वैष्णव आए थे उधर, आ पहुँचे थे। उसमें जब नाच रहे थे हजारों लोग उनकी सुंदर नृत्य को देख रहे थे, उधर देवानंद पंडित भी जाकर सब बाकी वैष्णवों को हटाकर उनको नाचने के लिए स्थान दे रहे थे। जब भी अनजाने से अगर वक्रेश पंडित नीचे गिर जाए तो देवानंद पंडित अपने कपड़ा लेकर उनको सफाई किया, उनके शरीर को धूल को निकाला उनके शरीर से। ये बात जब निमाय पंडित को पता चला वो बहुत खुश हो गए, उन्होंने एक वैष्णव की सेवा की है। इसलिए वैष्णव की सेवा करके देवानंद पंडित की ओर कारुण्य कटाक्ष को प्रदर्शित किया निमाय पंडित ने बाद में। इस तरह मैंने ये भी सुना एक प्रवचन में कि निमाय पंडित ने बाद में उनको बताया उन्होंने क्यों कुपित हुए थे, कारण क्या है। तो जानने के बाद उनको पता भी नहीं चला था ऐसा हुआ क्या हमारे से, पता नहीं था। तो तुरंत जाकर वो श्रीवास के पास जाकर दंडत प्रणाम करके माफ़ी मांग लिया उन्होंने। इस तरह माफ़ी मांग कर उनसे माफ़ी भी मांग लिया और निमाय पंडित भी खुश हो गए, और इसका नतीजा क्या निकला, देवान पंडित स्थित हो गए अपने भक्ति में अच्छी तरह। इस तरह अनेक लीलाओं को हम पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ है भगवान के भक्तों के लिए, हमारे हृदय में भावनाएं जो हैं भगवान के लिए, भक्तों के लिए जो भावनाएं जो हैं वो शुद्ध विशुद्ध भावना, कोमल भावना, जो बच्चों के बराबर बोले बाले बच्चे जो होते हैं उनके हृदय में जिस तरह की एक मासूम भावना है, इस तरह वैष्णव के हृदय में भी एक भावना है भगवान और भक्तों के लिए। वो भावना मिटना नहीं चाहिए, उस भावना खत्म होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो खत्म हो गया तो एक वैष्णव खोखला है, दूसरा कुछ नहीं है उसके जीवन में। और इस तरह के अपराध के कारण ऐसे होने की संभावना है। जैसे एक बार रूप गोस्वामी पाद वृंदावन में थे, एक लीला स्मरण कर रहे थे, ऐसे ही वो देख रहे थे ऐसे राधा रानी अपने आप को सजा रही है, उनके सखियां हैं उनको मदद कर रही हैं। तो उनके कमरे में अचानक श्याम आ गए पीछे, तो श्याम देखने लगे पीछे से, तो सब गोपियां हंस पड़ी। श्याम ने बोला, आप लोग आवाज़ मत करो, सब लोग शांत रहे। सब गोपियों को पता चल गया इसी कमरे में श्याम भी हैं, भगवान भी आए हैं, लेकिन राधा रानी अभी भी अपने आप को सजा रही है। तो राधा रानी को इंकित करना चाहती थी लेकिन कृष्ण ने छोड़ा नहीं उनको, आप कुछ मत करो, मैं देखना चाहती हूँ कैसे सजा रही है अपने आप को, कैसे सजा रही थी। अचानक राधा रानी ने आईने में देखा उनके पीछे कोई श्याम वर्ण के कड़े हैं, कौन है, तो मुड़कर देखा कृष्ण थे। तुरंत वो लज्जित हो गई, अपने चेहरे को ढकने लगी अपने दोनों हाथों से, और सब गोपियां जोर से हंस पड़ी। और जब गोपियां हंस पड़ी, रूप गोस्वामी भी हंसने लगे, जोर से हंसने लगे। तो एक लंगड़ा वैष्णव जो जा रहे थे देखा, अरे हमको देखकर हंस रहे हैं, हमने सोचा रूप गोस्वामी पहुंचो ही आत्मा है, महात्मा है, लेकिन हमको देखकर हंस रहे हैं इस तरह। बाकी लोग तो हंसते हैं मालूम है हमें, लेकिन रूप गोस्वामी हंसना ठीक नहीं है। इस तरह उनके मन में एक विचार आ गया। तो गए वो सनातन गोस्वामी के पास दूसरे कुटीर में, जाकर बोले कि आज हमारे मन में बहुत खेद है क्योंकि रूप गोस्वामी हमको देखकर हंसने लगे हैं, इस तरह बोले। तो सनातन ने बोला, क्या बोल रहे हो तुम, हो नहीं सकता कभी ऐसे, रूप गोस्वामी इतने महान वैष्णव हैं, वो तुमको देखकर हंसे नहीं होंगे। जरा मैं क्यों हंसा इसका कारण मैं बताऊंगा तुमको। ऐसे बोलकर सनातन गोस्वामी आंख बंद करके गोलक वृंदावन के चैनल के साथ कनेक्ट कर लिया उन्होंने, ऐसे कनेक्ट करके देखा, उनको भी ये लीला देखने को मिला, वो भी हंस पड़े। यही लीला चल रहा था ना उधर, वही लीला देखा उन्होंने। तो इसको देखकर लंगड़ा ब्राह्मण वैष्णव सोचे कि अरे ये भी हंस रहे हैं अभी, पहले वो हंस रहे थे, अभी ये बड़ा भाई ये भी हंस रहे हैं। तो सनातन ने बोला, मुझे बुरे मत समझो, मैंने क्या देखा तुमको बता दूंगा अभी। तो उन्होंने बता दिया। उसको सुनकर वो वैष्णव इतने हर्षित हुए, वो भी हंसने लगे। तो तभी सनातन ने बोला, अभी समझा तुमने वो क्यों हंस रहे थे। तो अभी वो वैष्णव के हृदय में बड़ा व्याकुलता आ गया। उसने सोचा कि इतने महान वैष्णव के ऊपर मैंने अपराध कर दिया, तो रूप गोस्वामी को मैंने गलत दृष्टिकोण से देखा, तो हे भगवान कितना बड़ा अपराध हो गया हमारे हाथ से, इस तरह सोचा उन्होंने। तो तुरंत वो गया रूप गोस्वामी के पास, दंडवत प्रणाम किया और अपने मन की बात बोल दिया उनको, आप बुरा मत समझो, पहले मैंने अपराध किया लेकिन अभी हमारा अपराध मिट गया, हमारे हृदय में आपकी ओर जो आदर है वापस स्थापित हो गया है, आप माफ़ कर दो हमको ऐसे। तो रूप गोस्वामी को बुरा लगा कि इस तरह मैंने हंसा अनजाने से, इसलिए सावधानी से हंसना चाहिए हम लोगों को, कब हंसना चाहिए सोच कर हंसना चाहिए। अगर कोई कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को डांट रहा है तभी आपने हंस दिया, तो लोग क्या सोचेंगे, हे ये मुझे डांट रहा है वो हंस रहा है, दोनों को कनेक्ट करेगा वो, है ना, ऐसे है। इसलिए थोड़ा सावधानी से सोचना चाहिए। तो रूप गोस्वामी ने सोचा मेरी ओर से अपराध हो गया, उन्होंने भी दंडवत प्रणाम किया। फिर भी ये दोनों वैष्णवों ने देखा कि उनके हृदय में कुछ तो अंकुर है अपराध का, अभी तक गया नहीं है, मिटा नहीं है, क्योंकि वो छोटा थोड़ा फीलिंग था कि थोड़ा दुख था उन दोनों के हृदय में। तो दोनों गए सनातन गोस्वामी के पास, बोले कि हम एक दूसरे को दंडवत प्रणाम कर दिया, सत्य बात बोल दिया, मन की बात भी बोल दिया, फिर भी मन में कुछ तो एक तरह का व्याकुलता है, खेद है। तो सनातन गोस्वामी बैठ कर 4 घंटा उनको कृष्ण कथा बोला, उनको कृष्ण कथा के बाढ़ से उनके हृदय को भर दिया। उसके बाद दोनों वैष्णव बहुत प्रेमावेश जागृत हो गए उनके हृदय में, तो वापस चले गए उसके बाद। तो हमारे हृदय में कृष्ण के लिए जो प्रेम है वो बहुत बड़े आग के बराबर है, उस आग को बुझाना नहीं चाहिए। उस आग में सब तरह के भौतिक इच्छाएं मिट जाते हैं, इस दुनिया की पदार्थों की ओर आकर्षण और 3 गुणों से मिलने वाली पदार्थों की ओर आकर्षण सब मिट जाता है, निर्बल भावना जागृत होता है, क्योंकि कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार है। इसलिए कृष्ण भी सूर्य के बराबर हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर भगवत धाम के अंदर प्रवेश करना हो तो हमें भी आग का शरीर चाहिए, जब आग के अंदर घुसना हो ऐसे। इस तरह परम पवित्र धाम जो है भगवान के धाम, उधर अगर प्रवेश करना हो तो हम भी शुद्ध होना पड़ेगा हमें भी। और भगवान के अंदर जितना भावनाएँ हैं, प्रेम है, इस तरह हमारे अंदर भी हम उनको मैच करने वाली प्रेम चाहिए हमारे अंदर भी हैं, तभी हम अंदर पहुँच पाएंगे उधर। इसलिए एक वैष्णव को अपने जीवन में सावधानी से बर्ताव करना चाहिए दूसरे भक्तों से। लेकिन अगर ऐसे बर्ताव करते करते कुछ गलती हो गया, अपराध हो गया, उस अपराध को मिटा देना चाहिए, उसको बड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ा करने से नुकसान ही ज़्यादा, कुछ लाभ नहीं होता है। अहंकार के तोषण, मन की तोषण, इंद्रियों की तोषण, जो जीव करने के लिए प्रयत्न करता है वो बेकार काम है, लेकिन आत्मा की तोषण तब होता है जब हम विष्णु की तोषण करते हैं। जब विष्णु की तोषण करना हो तो जैसे प्रभुपद बताते हैं, विष्णु के अंश जो हैं, जो भगवान के भक्त के रूप में इस दुनिया में घूम रहे हैं विष्णु के पार्षद होकर, विष्णु दूत के बराबर, उनकी ओर भावना, किस तरह की भावना हम रखते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो वैष्णव अपराध के बारे में इतना गहराई से इतना सावधानी क्यों दिया गया है, उसका एक कारण है, क्योंकि इस दुनिया में माया बहुत प्रबल है और सब जीव भटक रहे हैं, और इन जीवों को उद्धार करके भगवत धाम लेके जाने के लिए आध्यात्मिक दुनिया के गुरु और भौतिक दुनिया के गुरु दोनों भिखारी बनकर आते हैं। आध्यात्मिक दुनिया के गुरु कौन है? बलराम जी। भौतिक दुनिया में सबसे बड़े गुरु कौन है? ब्रह्मा जी। तो बलराम जी बनते हैं नित्यानंद प्रभु और ब्रह्मा जी बनते हैं हरिदास ठाकुर, और दोनों बेगिंग भीख मांगने के लिए जाते हैं सब जीवों से। बज गौरांगा कह गौरांगो तह गौरांगे रनाम रे, बज गौरांगो कह गौरांगो जय जना गौरंग बजे से हाय अमर प्राण रे, जय जना गौरंग बजे से हाय अमर भज गौरांग कह गौरांग ले गौरांग नाम रे, जय जना गौरंग बाजे से हाय अमर प्राण रे, इस तरह नित्यानंद प्रभु सब जीवों को भीख मांगते हैं, बोलते हैं कि बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, इस तरह। तो वो कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ जीवों को कल्याण करना चाहते हैं, परम कल्याण प्रदान करना चाहते हैं ऐसे है। और ऐसे भीख मांग कर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के द्वारा एक चमत्कारी दीक्षा दिलवाया दो लोगों को। कौन है वो? क्यों चमत्कार है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अपने सुदर्शन का प्रदर्शन किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु साधारणतः दिखाते नहीं थे कि वो भगवान है, लेकिन उधर अपने स्वामित्व को प्रदर्शित किया उन्होंने, मैं स्वामी हूँ करके ऐसे। इतना ही नहीं, पतित से पतित जगह मदे को भी नित्यानंद प्रभु ने उद्धार किया ऐसे। तो इस तरह भगवान की इच्छा को पूर्ति करने वाले हैं नित्यानंद प्रभु, भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा। उनकी इच्छा क्या है? अपने सब बच्चे, अपने सब अंश इस भौतिक दुनिया में भटकने वाले जल्द ही जल्द अपने भगवत धाम वापस लौट जाए, लौट आ जाए। तो इसलिए वैष्णव लोग वो लोग हैं जो सब भटकने वाले जीवों को प्रेरणा देकर भगवान की धाम की ओर मुड़कर उनको लेके जाने वाले, ये वैष्णव हैं। और ऐसे वैष्णवों की संख्या बहुत कम है इस दुनिया में, 7 बिलियन पॉपुलेशन है। कितने वैष्णव हैं? वैष्णव 2 मिलियन वैष्णव हैं अभी इस कान में, लेकिन ये होल भूमि का पॉपुलेशन कितना है? 7 बिलियन है। तो वैष्णव बहुत कम है, बहुत कम प्रतिशत है। समहात्मा सुदुर्लभ है, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यत सिद्धि बोलते हैं ना ऐसे। तो इसलिए जो वैष्णव खुद भी अभ्यास करते हैं वैष्णव जीवन का, और जो वैष्णव दूसरों को प्रेरणा देते हैं, और जो वैष्णव दूसरों को बहुत बड़े प्रचुर मात्रा में प्रेरणा देते हैं, इस तरह जितना एक वैष्णव का प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को भगवान की ओर मुड़ता है, भगवान की ओर लेके जाता है, उतना वैष्णव के अंदर भगवान ने शक्तिपात किया है। जितने वैष्णव के हृदय में हम भगवान की ओर श्रद्धा भावना प्रेम को जागृत कराने में सक्षम है, उतना वैष्णव बड़ा माना जाता है। तो इसलिए जितना वैष्णव महान हो, जैसे शिव जी के बारे में बात चल रहा है इधर, वह वैष्णवानाम यथाश ऐसे शिव जी भूत प्रेत पिशाचों को भी भगवान के भक्त बना देते हैं वो, इतना शक्ति है उनके अंदर। जैसे प्रभुपाद ने हिप्पियों को भक्त बनाया ऐसे है, तो महान वैष्णव ऐसे पतित से पतित लोगों को भी महान भक्त बनाते हैं। तो ऐसे वैष्णवों के साथ हम पेश आते समय सावधान से पेश आना चाहिए, क्योंकि उन वैष्णवों के अंदर जो कभी कभी अवगुण दिखते हैं वो अवगुण नहीं है, क्योंकि शिव जी जो हैं कभी कभी ऐसे भस्म पहनते हैं, ऐसे जटाधारी होते हैं, तीव्र तप करते हैं, ये सर्प पहने हैं, स्मशान घाट में रहते हैं, उनके संग अच्छा नहीं है। इसको देखने से लगता है कि क्या है, वो दक्ष ने बोला कि नाम में शिव है बस, शिव का मतलब है शुभ है, लेकिन उनका कार्यकलाप शुभ नहीं है, देखो स्मशान में रहता है ऐसे। इस तरह प्रभुपाद जी के भी कुछ गुरु भाइयों ने बोला कि ये क्या अमेरिका में जाकर क्या कर रहा है, हिप्पियों के बीच में रहते हुए सब गंदे लोग हैं, उनके साथ संग करता है, ये तो बिगड़ जाएगा उनके साथ है। इस तरह कुछ जो ईर्ष्यालु गुरु भाइयों ने ऐसे बोला, लेकिन पता नहीं चला उनको उस समय क्या चल रहा है प्रभुपाद जी की, और कैसे सारे दुनिया में चैत्र महाप्रभु की भविष्यवाणी को सार्थक बनाने वाले हैं, ये बात उनको मालूम नहीं था ऐसे। इस तरह कभी कभी जब एक वैष्णव कृपा प्रदर्शित करता है कभी हम उनमें त्रुटि देखने की संभावना है। इस तरह कभी कभी वैष्णव अपने क्रोध को प्रकट करता है तो उसको देखकर हम प्रभु हमारे मन विचलित हो सकता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास के ऊपर बड़ा क्रोध दिखाया उन्होंने, इस तरह नित्यानंद प्रभु ने जगह मदय की ओर करुणा दिखाया। तो कभी कभी कोई बोलेगा कि करुणा इनके ऊपर, ऐसे बदमाशी लोग क्या क्या किया है लोगों ने, चैन लेकर सोडा बाटल लेकर कितने लोगों को मारा है, कितना चोरी किया है, तो इनको क्या कृपा है क्या इनको, लेकिन ये नित्यानंद प्रभु की, तो नित्यानंद प्रभु की कृपा चैतन्य महाप्रभु की क्रोध दोनों को हम समझ नहीं सकते हैं, ये हमारी सीमा से ऊपर है, समझ नहीं पाएंगे। इस तरह वैष्णव के वेशभूष जैसे पुंडरीक विद्यानिधि ने ऐसे कपड़े पहने थे कोई समझ नहीं पाए, गदा दर्पण इतने उनको ऐसे। इस तरह कभी कभी रीति रिवाज करते समय वैष्णव लोग जैसे पांडा लोगों ने एक स्टार्च के कपड़े पहना दिया जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को, जिसको देखकर पुंडरीक विद्यानिधि अपने मन में सोचा उन्होंने कि ये लोग धोए बिना पहना दिया कपड़ा भगवान को, कितना बड़ा गलत है, ऐसे सोचा उन्होंने। लेकिन भगवान जगन्नाथ ने अपराध ले लिया तो उनके स्वप्न में आकर टिशुम 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 करके मारने लगे। अगले दिन सुबह पुंडरीक विद्यानिधि के गाल सूज गए, बड़ा बड़ा हो गया ऐसे, एप्पल जैसे बड़ा हो गया ऐसे। ये भी देखिए ये बड़ा अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसे भगवान के हाथ से लाफा खाने के लिए भी बड़ा योग्यता की जरूरत है, ऐसे नहीं कि किसी को भी मिल जाएगा है? लेकिन दुनिया को सिखाने के लिए भगवान ऐसे लीलाएं करवाते हैं अपने शुद्ध भक्तों के द्वारा ऐसे। तो इस तरह प्रभुपाद बताते हैं दक्ष प्रजापति ने अपराध की। और तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं इस तात्पर्य में कि क्रोध को प्रदर्शित करना सही है इस तरह की अवस्था में, क्योंकि अगर कोई अपराध करता है वैष्णव की ओर, वैष्णव को मारता है कोई फिजिकली नहीं तो उसको अपराध करता है, तो हमें भी क्रोध प्रदर्शित करना चाहिए। तो देखिए इस तरह प्रभुपाद जी ने अनेक स्थानों में लिखा है, और इसको कैसे अपने जीवन में लागू करना ये जानना भी बहुत आवश्यक है। कभी कभी शास्त्र के वचन बहुत प्रबल होते हैं, जैसे अगर कोई वैष्णव का अपराध करता है तो उसके जिह्वा को काट देना चाहिए अगर आप क्षत्रिय हो तो, अगर आप क्षत्रिय नहीं हो अगर ब्राह्मण हो तो वाद विवाद के द्वारा वो गलत धारणाओं को सही कर देना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए अगर ब्राह्मण हो तो। नहीं आप ब्राह्मण भी नहीं हो क्षत्रिय भी नहीं हो, आप गलत धारणाओं को निकाल भी नहीं सकते, उनका जीवा भी काट भी नहीं सकते, क्या करना चाहिए, कान बंद करके भाग जाना चाहिए उधर से। कभी बताया वो यही बोल रही है, सती बोलेगी बाद में बोलेगी, वो आएगा वो इस तरह। इसका मतलब नहीं कि सब वैष्णव एक ससुर के साथ जाए इधर उधर, अगर कोई अपराध किया काट दो उसका काट दो ऐसे ऐसा अगर हम करेंगे तो पुलिस पकड़ेगा है ना, जेल में डाल देंगे हमको। तो इसलिए शास्त्र में जो दिया है उसको सही ढंग से कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना वो जानना भी आवश्यक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब बोलते हैं। तो एक बार हमारे कुछ भक्त लोग एक वैन में गए थे किताब वितरण के लिए, वापस लौटते समय अचानक कोई लड़का आ गया सड़क के बीच में। आपको मालूम है बाहर की दुनिया में भी अगर कोई ड्राइवर चला रहा है, बीच में गलत डायरेक्शन से कोई आ गया तो कुछ गाली देते हैं लोग, बाहर के लोग हैं तो हमारे भक्त तो गाली नहीं देंगे, वैष्णव हैं। लेकिन इन्होंने गाड़ी को रोका तो वो बाहर जाकर उसके हाथ पकड़कर थोड़ा ऐसे एक लाफा दिया उसको, बोला कह रहे मूर्ख गाड़ी के बीच में पड़ गए तुम, अगर मैं थोड़ा असावधानी से चलाया तो तुम मर जाते थे तुम, मूर्ख, ऐसे उनको एक लाफा दिया। तो देखकर वापस आ गए, बैठ गए चलाने के लिए। और सो भक्त लोगों ने बोला कि प्रभु जी इधर थोड़ा छाया है पेड़ के नीचे, गाड़ी को खड़ा करो थोड़ा प्रसाद पा लेते हैं। तो सब भक्त लोग गाड़ी खड़ा करके प्रसाद पा रहे थे। इतने में 40 लोग आ गए। तो ये लड़का ने फ़ोन करके बुला दिया अपने लोगों को, अपने मित्रों को बुला दिया। तो वो लोग आ गए, सब इकट्ठा हो गए, सब घेर लिया उन्होंने पूरा गाड़ी को। तो उनका लीडर बोला किसने मारा हमारे लड़के को, हम आपके गाड़ी को जला देंगे, देखो कैरोसिन लाया है, मैच बॉक्स लाया है, पूरे गाड़ी को हम जला देंगे, बोल रहा है वो। तो भक्त लोगों ने तुरंत हमारे जो बस पार्टी वैन पार्टी के लीडर को देखा, प्रभु जी ये क्या कतरा खड़ा हो गया हमारे सामने है? तो हाँ वो बोला फिर क्या, वो तो बीच में आ गया ना इसलिए मैंने उसको लाफा दिया, बोला उसने। भक्त लोगों ने बोला प्रभु जी अच्छा माफ़ी मांग लो इनसे। तो वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है, वो बोल रहा है देखो अगर वो बीच में आता है और अगर हमारा एक्सीडेंट होता है तो हम सबको पुलिस पकड़ेगा, बड़ा फाइन भरना पड़ेगा, प्रभुपा जी के पैसा का बर्बादी होगा, इसलिए मैंने उसको लाफा दिया, देखो इस तरह बोला उन्होंने। फिर भी वो लोग तो तांडव कर रहे थे, वो बोले कि नहीं नहीं माफ़ी नहीं मांगेगा तो छोड़ेंगे नहीं, नहीं जला देंगे गाड़ी को ऐसे। इतने में वो लोगों ने फ़ोन किया, एक वक्त फ़ोन किया ग्रुप के लक्ष्मण को, फ़ोन किया प्रभु जी ऐसा हो गया इधर आप तुरंत आ जाओ। तो लक्ष्मण पूजा गए थे उधर से फ़ोन किया उन्होंने मुझे, उसके बाद पूछा उन्होंने, मैंने बोला तुरंत माफ़ी मांगो, बोला कितने बार सुना है त्रिनादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना, अभी वो प्रवचन में जो सुना उसको क्या करो, लाओ करो प्रैक्टिकल करो। तो हमारे लक्ष्मण प्रभु गए उन लोगों के पास, तुरंत दंडात प्रणाम किया, बोला कि हमारे हाथ से गलती हो गई आप लोग चले जाओ। तो वो लोग बोले नहीं नहीं आप झुकने से होगा नहीं काम, जो ये व्यक्ति ने लाफा दिया उसको ही झुकना चाहिए। लक्ष्मण प्रभु उसको बोला कि प्रभु जी आप झुक जाओ नहीं तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं। वो बोला बोलता है कि हम झुकेंगे नहीं, हम अर्जुन जैसे हैं, भगवान ने बोला अर्जुन को झुको मत लड़ाई करो। तो लक्ष्मण बोला आपके अर्जुनत्व जो है उसको मंदिर में दिखाओ, इधर बाहर मत दिखाओ। तो लक्ष्मण प्रभु उनको बहुत बहुत विनती करके अंत में वो झुका। जब एक मिनट के अंदर सब लोग चले गए, कोई नहीं थे उधर। बोलने का मतलब क्या है, हम हर देश काल पात्र के अनुसार हमें क्या करना चाहिए मालूम होना चाहिए, यह आवश्यक है। कभी कभी आपके माता पिता भी नहीं तो आपके भाई बंधु भी इस्कान के बारे में कुछ गलत बोलेंगे, प्रभुपाद के बारे में कुछ गलत बोलेंगे, आप बोलेंगे अपराध कर दिया आपने, काटो इनकी जीवा को भी है, आप बोलेंगे हैं, आप बोलेंगे आप ऐसे हैं। तो भक्तों को जानना चाहिए कि वो अपराध करने के कारण आपके ऊपर प्रेम है, उनको इतना प्रेम है कि आपको बचा कर रखना चाहते हैं, इसलिए वो सर बोलते हैं। तो हमें ऐसी बातें उनके साथ करना नहीं चाहिए जो उनके मुँह से अपराधों को निकालेगा, बात को डाइवर्ट कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, उनको इस्कान मिलाकर राजभोग कहलाना चाहिए और पूछना चाहिए कैसा है, तभी वो क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएट करके उनके जो भी अपराध हुआ सब मिट जाएगा उनके। इस तरह इधर जो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि क्रोध भक्तों को दिखाना चाहिए, लेकिन भक्त लोग कभी कभी इन स्टेटमेंट को लेकर गलत उपयोग प्रयोग करने की संभावना है इसे। लेकिन हम प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की, हमने भी एक दो उदाहरण दिया ऐसे। तो ये वैष्णवों के समूह में वैष्णव की ओर कोई व्यक्ति अत्याचार करने के लिए क्यों करेंगे, उदाहरण के लिए जब शिवा सांगन में जब रात को कीर्तन होता था तो अनेक ब्राह्मण लोग जो वैदिक ब्राह्मण थे वो बाहर आकर कटकटाते थे, लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सबको अनुमति नहीं देते थे, सिर्फ वैष्णव को अनुमति देते थे। तो ये लोग बाहर से चिल्लाते थे अरे हम बहुत पढ़े लिखे चतुर्वेदी आए हैं, त्रिवेदी आए हैं, हमको छोड़ देना ही है अंदर, आप लोग क्या कर रहे हो अंदर, चिल्ला रहे हो, चिख रहे हो, शायद भूख है आपको है? तो बोलते थे कि इनको टमाटर फेंको अंदर है, नहीं तो कुछ चावल फेंको इनको खाने के लिए, ये लोग चिल्ला रहे हैं ऐसे है। और बोलते थे पता नहीं क्या चल रहा है अंदर, कुछ तो गड़बड़ है, इस तरह के बातें करते थे वो लोग, ब्राह्मण लोग निंदा करते थे है? और निंदा करने के कारण वो ब्राह्मण लोगों के हृदय में कभी भक्ति भावना जागृत नहीं हुआ। देखिए ब्राह्मण में दो तरह के ब्राह्मण हैं, एक है जो साउथ इंडियन ब्राह्मण, जो चैतन्य महाप्रभु आलिंगन दिया जब भगवद गीता पढ़ते समय उनकी आंखों में आंसू बहने लगा है ना, प्रेम से विह्वल हो गए, यही एक तरह का ब्राह्मण है। और दूसरे तरह का ब्राह्मण है यज्ञिक ब्राह्मण, उनके हृदय तो कठोर पत्थर जैसे रहा, कृष्ण बलराम आने के बाद भी उनके हृदय पिघला नहीं। इस तरह दोनों तरीके के लोगों के बारे में हम सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में ऐसे। तो बात यह है क्या है कि अगर हम वैष्णव समूह में सही भावनाओं के साथ, हम भगवान और भक्तों के साथ पेश नहीं आते हैं, तो इसका सीधा नतीजा है कि हमारे हृदय में भक्ति भावना जागृत नहीं होगा। और इसके एकदम विरुद्ध भगवान हमारे इंद्रियों की आकर्षण, ये प्रलोभन इस दुनिया के, उनको बड़ा कर देंगे भगवान। तो ऐसे व्यक्ति प्रलोभनों के पीछे भागता है, इंद्रियों के तर्पण में लग जाता है, उसके कृष्ण प्रेम सूख जाता है, और इस तरह वो वैष्णव समूह को छोड़कर वो ऐसे कुछ भौतिक इसमें कार्यकलाप में, कुछ लोग बड़े बड़े मेटेरियल एम्बिशन को लेकर सारे दुनिया में भटकते हैं, उनको वैष्णवता में, भगवान की लीला कथा में रुचि नहीं जागृत होता है, इस तरह शास्त्र बताते हैं। और इससे बचने के लिए बोला गया है कि एक भक्त को अपने कोमल भावनाओं को सुरक्षित रखना चाहिए। जो ये दक्ष प्रजापति जानता नहीं है इसके बारे में, दक्ष प्रजापति शिवजी की ओर अपराध को बनाए रखा अपने हृदय में, उसके बाद जब उनको बकरे का सर मिला उसके बाद वो सर झुकता है और माफ़ी मांगता है, लेकिन माफ़ी मांगने में भी अपराध है आप देखेंगे। आप जब उस प्रार्थनाओं को पढ़ेंगे तभी आप देख सकते हैं उस समय है। तो वो भगवान को प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा है कि हे भगवान आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, इनडायरेक्टली बोलता है शिवजी जैसे आप नहीं हैं जो छोटे अपराध के लिए किसी को बड़ा दंड देता है। ऐसे कुछ तो भगवान को प्रशंसा करते समय जब भगवान आते हैं यज्ञ के बाद तभी प्रशंसा में शिव जी को इनडायरेक्टली निंदा करता है। तो ये दक्ष प्रजापति को बाद में उसके मृत्यु के बाद दो मन्वंतर के बाद चक्षुष मन्वंतर में वापस इसका जन्म होता है, तभी ये क्या बनता है और एक बार दक्ष बनता है। अभी दक्ष ब्राह्मण है लेकिन उस मन्वंतर में वो दक्ष क्षत्रिय बनकर आता है और उनके 10,000 पुत्र हरियश्वस और 1,000 पुत्र शवलश्वस उत्पन्न होते हैं और सबको नारदमुनि ब्रह्मचारी बना देते हैं। उसके बाद बहुत कुपित हो जाता है। तो अपराध भावना जन्म के बाद जन्म जाता है, पहले ही अपराध किया उसने शिवजी के साथ, लेकिन बाद में अपराध करता है वो नारद मुनि की ओर। नारद मुनि को बोला कि तुम असाधु हो, मैं असली साधु हूँ, देखो मैंने परिवार के सब कर्तव्यों को निभाया है लेकिन तुमने कुछ निभाया नहीं और तुमने भटका दिया हमारे पुत्रों को। इस तरह वो नारद मुनि को, और नारद मुनि को बोलता है कि मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम एक स्थान में रहने के लिए तुम्हें अनुमति नहीं, अभी तुम भटकते रहो सारे दुनिया में। इस तरह वो क्यों ऐसे श्राप दिया, आत्मवान माने थे जगत बोलते हैं। दक्ष प्रजापति अपने घर में स्थित था और अपने ही महल में, तो एक स्थान से दूसरे स्थान वो भटकना नहीं चाहता था क्योंकि मेरा घर है, हमारे गाय हैं, हमारे खेती है, हमारे धन दौलत हैं। इस तरह सोचने वाले जिनकी हृदय में ये ग्रंथि है, क्या ग्रंथि है, ये हमारा जमीन है। कुछ लोग हैं अपने जमीन छोड़कर नहीं जाएंगे, अपने जमीन में ही उनका जन्म होता है, उसी जमीन में ही वो मरना चाहते हैं, कितना आसक्त है वो, हृदय स्पर्शी आकर्षण है उनको वो जमीन से। तो उसने सोचा कि मैं नारद मुनि को इस तरह श्राप दूंगा, तुम भटकते रहो तो अपने जमीन में रह नहीं पाएगा, उसको भटकना पड़ेगा, हा 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 ऐसे सोचा उसने। लेकिन नारद मुनि बहुत खुश हो गए, हम तो परिव्रजक आचार्य हैं तो हमको इधर जाना है, उधर जाना है, स्वर्गलोक में जाना, नरक में जाना है, वैकुंठ में जाना है, इस तरह आपके हिसाब से हमें प्रवास की मौका मिलेगा, हमें इस तरह सोचकर नारद मुनि चले गए, करेक्ट है ना। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, इस तरह के अपराध से युक्त मन जो है उसको शुद्ध अगर कोई व्यक्ति नहीं करेगा, उसके हृदय में घृणा घृणा जब पैदा होता है वो घृणा एकदम गहरा है। देखिए राग और द्वेष, तो द्वेष भावना जो है उससे अपराध उत्पन्न होता है, राग से आसक्ति उत्पन्न होता है। तो आसक्ति से भी इंसान इस दुनिया में पतन हो जाता है उसका, जैसे भरत महाराज का है, इस तरह घृणा से भी एक व्यक्ति का पतन होता है इसे। तो इसलिए राग द्वेष विमुक्त इस्तु भगवान बोलते हैं, विषयान इंद्रियश्चरण आत्मा विषय विधेय आत्मा प्रसाद मध्य गच्छति। अगर भगवान की प्रसाद चाहिए तो हमें राग द्वेषों से ऊपर उठना चाहिए। पहले हमारे मन में संकल्प विकल्प है, ये व्यक्ति मुझे पसंद है, यह व्यक्ति मुझे नापसंद है, ये मुझे खुश किया है, वो मुझे नाखुश किया है, इस तरह हम इस सारी दुनिया के लोगों को मित्र और शत्रु के रूप में हम बंटवारा करते हैं। उसके बाद जिनको हम शत्रु मानते हैं उनकी ओर गलत भावनाएं खड़ा होता है हमारे हृदय में, और हमारे मन से और वाणी से हमारे भावनाओं से हम उनको दोष देते हैं, दोषारोपण करते हैं और अपराध करते हैं, और कभी कभी उनके अंदर गलती न होने के बावजूद भी उनकी ओर अपराध करते हैं, और यही कारण है घृणा पैदा होने का। जब घृणा पैदा होगा, जिस हृदय में घृणा है उस हृदय में भक्ति घुस नहीं सकता है, क्योंकि राग और द्वेष जो हैं ये बहुत जहरीले चीज़ें हैं आत्मा के लिए, और इनके कारण भक्ति जागृत नहीं होता है। जैसे राग से भौतिक आसक्ति बढ़ता है, जैसे धृतराष्ट्र के हृदय में आसक्ति बढ़ाता, भरत महाराज के हृदय में आसक्ति बढ़ाता, और सुरुचि की ओर ये जो उत्थानापाद की आसक्ति था, इस तरह की आसक्तियाँ बढ़ते हैं। नहीं तो घृणा के कारण, जैसे दक्ष प्रजापति के हृदय में घृणा पैदा हुआ, ऐसे सौबरी मुनि के हृदय में घृणा पैदा हुआ गरुड़ की ओर, इस तरह घृणा पैदा होता है। तो राग और घृणा, राग और द्वेष, ये दोनों बड़े खतरनाक जहरीले पदार्थ हैं जीव के लिए, और जीव को इनसे ऊपर रहना चाहिए। इसलिए अगर हम बुद्धिमान हैं, हम देख रहे हैं कि कुछ भक्तों की ओर हमारे मन में सही भावना नहीं है, कुछ गलत भावनाएं उठ रहे हैं या चाह बुरा है ऐसे हैं, तो उन भावनाओं को मिटाने के लिए ऐसे वैष्णवों के पास जाना चाहिए और संग करना चाहिए जो इन वैष्णवों को प्रेम करते हैं, और उनसे पूछना चाहिए कि ऐसा कैसे आप प्रेम कर सकते हैं इनको, इनमें क्या देख रहे हो आप कि आपका इतना प्रेम है इनकी ओर। तो वो बोलेगा इनके अंदर इतने अच्छे गुण हैं, तभी उनके मुख से अच्छे गुण बहुत प्रचुर मात्रा में सुनकर हमारे हृदय में जो भी गलत भावना है वो धीरे धीरे मिटने की संभावना है। और इस तरह, और ये भी है दूसरा चीज़ है, हमें ये बात सावधान रखना चाहिए, क्योंकि जो जिस काम के लिए हम आए हैं इस संस्था में, जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, अगर उसमें चोट पहुंच गए तो क्या लाभ है। जो किस काम के लिए आए वो, जैसे कोई बोलते हैं आई वन द बैटल, लाइक ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड है, एक डॉक्टर बोलता है हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, हमने यू नो वी हैव टू, जिसको काटना है उसको हमने काट दिया, सिर्फ पेशेंट बचा नहीं, मर गया, तो उससे क्या लाभ है। इस तरह हम संस्था में आए, बहुत कुछ बड़े बड़े काम किए, लेकिन हमारे हृदय में कृष्ण के लिए रति जागृत नहीं हुआ, तो किस काम के लिए है वो नहीं हुआ, वो क्या लाभ। इसलिए वैष्णवों को अपने जीवन में अपने ही हृदय का शोधन करना चाहिए। दूसरों को सुधारने का काम हम ज़्यादा कर नहीं पाएंगे और हमारे हाथ में भी नहीं है, ट्राई कर सकते हैं लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन खुद का, खुद के अंदर त्रुटियाँ देखना और उन त्रुटियों को कैसे जैसे कांटों को निकालने के बराबर निकाल देना, जैसे जंगल के पत्ते में कांटे होते हैं, कांटे को निकाल दो पाँव में नहीं चुभेंगे, इस तरह हम भी हमारे हृदय में जो कांटे हैं जो भक्ति भावना को विकसित करने में बाधा डालते हैं, उन कांटों को धीरे से पहले देखना चाहिए और निकालना चाहिए। जैसे चैत्र महाप्रभु ने बोला कोटि नाटी क्या है, निषिद्धाचार जीव हिंसा न पूजा लाभ प्रतिष्ठा उपशाखा गण, ऐसे बताते हैं कोटिनाटी, व्हाट इज द सेकंड वन, कोटिनाटी जीव हिंसन निषिद्धाचार पूजा लाभ प्रतिष्ठा उपशाखा आदि गण, ऐसे कुछ बताते हैं। इसमें बताते हैं कि कोटिनाटी का मतलब है डुप्लिसिटी, व्हाट यू कॉल डुप्लिसिटी, आई डोंट नो, कपटता, कपटता, निषिद्ध आचार का मतलब चार नियमों को तोड़ना, और जीव हिंसन जो आता है वो वैष्णव अपराध है, जीव हिंसन, और पूजा लाभ प्रतिष्ठा उपशाखा आदि गण, इन उपशाखाओं को निकाल देना चाहिए कि पौधा जो कृष्ण प्रेम की लता जो है उसका वर्धन हो, हम जो नाम जप कर रहे हैं वो पानी सिंचन हो, ये भक्तिलता बीज का वर्धन करने में वो पानी लगे, ऐसा ना कि हम रोज जप कर रहे हैं लेकिन अपराध बहाना बढ़े, अपराध बहाना बढ़ता है हमारी भक्ति बहुत संकुचित हो जाता है, वो आगे बढ़ नहीं पाता है एक व्यक्ति के, तो उस कारण हृदय में साक्षात्कार नहीं उठेंगे एक व्यक्ति के हृदय में, भगवान और भक्तों की ओर प्रेम नहीं बढ़ेगा, और एक व्यक्ति सब बुकिश नॉलेज उसके कारण वो ये नहीं कर पाता है, उसको पचन नहीं कर पाता है भक्तिमय जीवन को, तो पचन नहीं किया। देखिए नॉलेज विजडम एंड रियलाइजेशन थ्री स्टेप है, तो नॉलेज है किताब पढ़ने से मिलता है, विजडम मिलता है महात्माओं से सुनने से, और रियलाइजेशन मिलता है अपने जीवन में लागू करने से और सेवा करने से। तो इसलिए हमें साक्षात्कार प्राप्त करना है तो साक्षात्कार प्रदान करने वाले भगवान कृष्ण हैं, इसलिए हम भगवान कृष्ण के दिए हुए विधि विधानों का हम पालन करें, उस तरीके से पालन करें जिससे भगवान हमसे प्रसन्न हो, महात्मा पुरुष हमारे से प्रसन्न हो, वैष्णव प्रसन्न हो, कि हम कृष्ण प्रेम को हम जागृत कर सकें। कृष्ण भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर भक्त वृंदा की, हरिनाम प्रभु की। थैंक यू वेरी मच।